पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की, पुरुषोत्तम मास महोत्सव की, तिथाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के 16 मई के प्रभात जागृति कार्यक्रम में श्री पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत है। और श्री कृष्ण भगवान की और सभी गुरुजनों की ये असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हमें अस्पताल में रहते हुए भी ऐसे भगवान के विषय में संग करने का मौका मिलता है। ये बहुत ही अकल्पनीय यानी इनकंसीवेबल बात है कि कैसे एक अस्पताल में जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है उसके साथ साथ सत्संग भी होता है। ये बार बार आश्चर्य लगने वाली बात है, लेकिन फिर भी ऐसे दिव्य आश्चर्यमय वस्तुस्थिति यानी रियलिटी के हम क्या कहते हैं साक्षी हैं, विटनेस हैं, ये हमारा भाग्य है। इसलिए इस भाग्य को नित्य के स्तर पर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारा भाग्य प्राप्त होता है फिर उसकी आदत बन जाती है और फिर इसका मूल्य जो है वो कम होने लगता है, इट बिकम्स ऑर्डिनरी। लेकिन हमारा भाव उसके प्रति अगर कम मूल्य वाला हो जाए फिर भी उस व्यक्ति का वस्तु का मूल्य कम नहीं होता है, वो जो दिव्य वस्तु है वो दिव्य ही रहती है, हमारा उसके प्रति भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं। और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको अगर अपने कार्य की जगह पर भी पालन करने का मौका मिले तो परम भाग्य की बात है, क्योंकि आमतौर के लोगों को भजन अलग करना पड़ता है और काम अलग करना पड़ता है, और काम के जगह पर जो भी दोष कंटेमिनेशन निर्माण होता है उसको धोने के लिए फिर जाकर वीकेंड में कुछ करना पड़ता है, मंदिर में जाकर कुछ सेवा करनी पड़ती है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन और कार्यकारी जीवन यानी प्रोफेशनल व्यावसायिक जीवन, ये दो अलग चीजें हैं बाकी सबके जीवन में, अलग ही होती है, उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं। आप अपने कार्य की जगह को भगवान के भावना से भरा हुआ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो ये भी एक अद्भुत बात है कि हमारा कार्य, हमारा जो आमदनी का साधन है और हमारे जीवन का उद्देश्य जो है वो एक जगह मिला हुआ है। तो ये मनुष्य जीवन के व्रती उद्देश्य का जो कार्य है वो हमें एक साथ करने को मिल रहा है। हमारा धन अर्जन करने का कार्य, परिवार को पालने का कार्य और भगवान को प्राप्त करने का कार्य एक हो गया है। सच अ फॉर्चून, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ना वो केवल व्रत के लिए है। लोग सोचते हैं कि इतनी सारी बुद्धि प्राप्त हुई है, इतना सारा प्रगत इंद्रिय प्राप्त हुई है और जो जानवर नहीं कर सकते हैं वो करने की सुविधा प्राप्त हुई है, जो भोग जानवर एक स्तर पर ले सकते हैं उसका बहुत अच्छी स्तर पर बुद्धि का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं, तो क्यों ना उस बुद्धि और इंद्रियों को लेकर पूरा जीवन भोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। अरे ये हमारी अधिकतर प्रवृत्ति होती है, लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए जीवन का उद्देश्य पूरा विपरीत है, इससे पूरी तरह से दूसरी दिशा में। तपो दिव्यम पुत्र कादि, ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं कि यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है ना वो तप करने के लिए है। तप करने का मतलब ये नहीं कि आप अभी छोड़कर सब कुछ हिमालय में बैठ जाओ गुफा में, परिवार पैसा धन दौलत कार्य सब छोड़कर। तप जो है वो बाह्य तरीके का नहीं होता है, तप जो है वो अंदर का होता है। अंदर की प्रवृत्ति तप की होनी चाहिए, भोग की नहीं होनी चाहिए। आप सभी भोगों के बीच में रहकर भी उसको नहीं ले सकते अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि आप नहीं, आप जानते हो कि ये नहीं हमारे लिए अच्छा है। सारे भोग सारे तरफ फैले हुए हमारे आसपास, लेकिन फिर भी अगर हम अंदर से तप वृत्ति में है, व्रत वृत्ति में है, तो उसको छोड़ सकते हैं और आपका दिल आपको जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कि कलयुग के अंदर तप का मतलब ये नहीं कि आपको परिवार छोड़ना है, काम छोड़ना है, धन छोड़ना है, संपत्ति छोड़नी है, जिम्मेदारी छोड़नी है, सब कुछ छोड़कर एकांत में कहीं जाना है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और वहां पर बैठकर कुछ करना है। प्रहलाद महाराज भी भागवत में बताते हैं कि तप वो नहीं है कि आप एकांत में जाके अकेले में सबसे दूर रहो और करो। वो भगवान नरसिंह भगवान को बताते हैं कि मैं उन संतों को मानता हूं जो अगर साक्षात्कारी है तो वो जहां पर लोग भोग ले रहे हैं उनके बीच में जाकर उनको उस भोग से निवृत्त करें, वो संत मेरे लिए वंदनीय है। वो नहीं है जो एकांत में कहीं खुद के निजी उद्धार के लिए कुछ तप कर रहे हैं। तप वो है जो हमारे साथ साथ और भी लोगों का उद्धार करे। तो ऐसे धरोहर लेगेसी को हम प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि अगर हम भागवत से जुड़े हैं तो हम प्रहलाद महाराज से भी जुड़े हुए हैं, ध्रुव महाराज से भी जुड़े हुए हैं, सब भगवान के जितने अवतारों का वर्णन है उससे भी जुड़े हुए हैं। सब फॉर्चून कि कोई भी योग्यता ना होते हुए हम इतने महान हस्तियों से जुड़े हुए हैं और इतने महान हस्तियों को जुड़ने का क्या लाभ है, उनकी शिक्षाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनके उपदेशों को हम समझ सकते हैं। और भगवान इतने दयालु हैं, कोई भी जरूरत ना होते हुए भी इस दुनिया में बार बार आते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर जो लोग हम लोग आए हैं वो भगवान को छोड़कर आए हैं, उनका सानिध्य, उनका संग, उनका उपदेश, उनका दिव्यता का जो लाभ था वो सब छोड़ के हम लोग इंद्रियों के पीछे भागने के लिए और भोग लेने के लिए यहाँ पर आए। एक तरह से जिनके जिनकी कृपा हमारे ऊपर है उनसे विद्रोह करके हम लोग यहाँ पर आए। तो ऐसे विद्रोही लोगों के पीछे भागने की क्या जरूरत है, जाओ, यहाँ नरक में सड़ना है सड़ो, मुझे छोड़कर जा रहे हो, जाओ, मर्जी आपकी। लेकिन करुणा ऐसी एक वस्तु है ना, जो भगवान उसके सागर है, अनंत अथा सागर करुणा के, वो करुणा उनको शांत बैठने नहीं देती। अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं, अभी तो नहीं होते आजकल, लेकिन अगर 5 बच्चे हैं और उसमें से एक समझो घर छोड़ के चला गया है झगड़ा करके, तो माता पिता का मन कहाँ रहता है? जब घर में 4 अच्छे बच्चे हैं, इतने 4 है एक जगह, तो क्या हुआ, 4 बच्चों को ध्यान दो? ऐसा नहीं होता है। माता पिता का मन उस बच्चे पे रहता है जो छोड़ के चला गया है। इसका मतलब यह नहीं कि उनको 4 बच्चों पर प्रेम नहीं है, क्या उनके घर पे रहने की उनकी वैल्यू नहीं है, क्या बड़ा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन करुणा ऐसी एक चीज है ना जो एकदम विपरीत व्यवहार करती हो, जो विद्रोही है, जो दंड के लायक है, उसी पर कृपा, उसी पर ध्यान, उसी पर उसका ही विचार, उसका ही चिंतन किया जाता है, क्योंकि उस वो कुछ खो चुका है, उस पर दया आती है, करुणा आती है, दुख होता है। इसलिए इतने अनंत मात्रा में जीव गौलोक में भगवान के साथ रह रहे हैं, आप उसका कंपेयर भी नहीं कर सकते कि भाई 1000 गुना की, कोटि गुना की, कितना खरब गुना की, निखरब गुना, आई डोंट नो। इतने गुना लोग वहां पर रह रहे हैं जो भगवान के एकदम एकाग्रता से लीन होकर प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा संग भी त्याग करके भगवान बार बार आते हैं और हमको पुकारते हैं, आओ लौट चलो, क्यों यहां तड़प रहे हो। और उस उपलक्ष्य में क्या क्या नहीं करते हैं, एक तो अपने संतों को भेजते हैं जो उनके प्रियजन हैं, उनका संदेश ऐसे हृदय में लाद कर भर कर आते हैं, हा? फुल्ली लोडेड। तो ग्रंथों को भेजते हैं, उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं मैसेज, और बाद में खुद आते हैं, खुद जो कोई प्रधानमंत्री है ना, उसको अगर हम यहाँ के मीरा रोड की सड़क बनानी है तो थोड़ी खुद आके बनाएगा, तो वहां से कुछ पास कर देगा रूल्स, यहाँ पर उसके अधिकारी बना देंगे, उसके असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट जो है वो रोड बना देंगे यहाँ पर। लेकिन प्रधानमंत्री खुद आकर रोड बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, अरे बहुत कृपा है उनकी, कुछ जरूरत नहीं करने की, लेकिन आके बना रहे हैं आपके लिए। तो वो संदेश किताबों के माध्यम से भी दे रहे हैं, संतों को भी भेज रहे हैं, और आर्च विग्रह के रूप में भी, मूर्ति के रूप में भी आए हैं, बहुत सारा चीज इंतजाम करके रखा है, फिर भी खुद आते हैं, केवल प्रेम के वश आते हैं, केवल प्रेम के वश, और कोई कारण नहीं उनका। तो उस प्रेम और करुणा को प्रतिसाद देना हमारा फर्ज है। अगर हम थोड़ी बहुत बुद्धि रखते हैं अपने पास जो भगवान ने दी हुई है, उसको अगर उपयोग करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये भगवान की असीम कृपा है, जो हम पर प्रेम करते हैं इसलिए बार बार आते हैं। क्यों ये अधिक मास का बेनिफिट हमको दिया है भगवान ने, जो आज से शुरू हो रहा है 30 दिन तक? जैसे कि दुकानों तो नहीं, कोई दिवाली में क्या करते हैं, एक शर्ट ले लो 3 शर्ट फ्री, तो दुकानदार क्या होता है कि सेल बनाता है आपका, कि ले लो भाई जल्दी जल्दी ले लो, माल सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, कुछ ऑफर दे रहे हैं ताकि आप उसको ले लें इसलिए। लेकिन अगर कहीं दुकानदार बोलेगा कि एक शर्ट पर 100 शर्ट फ्री, तो आपको पहले विश्वास ही नहीं होगा, कैसे कैसे होता है, हमने 2-3 भी सुना है, 4 भी सुन सकते हैं कभी कुछ ज्यादा डेस्परेट होगा तो। लेकिन अगर कोई लिखेगा एक शर्ट पे 100 शर्ट फ्री, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा उस बात पर कि ये ढोंग है, कुछ गलत है, कुछ मेरे कुछ कपट है इसके अंदर। लेकिन भगवान ऐसा सेल बनाते हैं, कार्तिक महीने में ऐसा सेल बनाते हैं कि इसमें कोई व्रत करेगा तो सीधे मेरे पास पहुंच जाएगा। साल में एक बार आता है वो, है ना, दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त आता है जो हमें मदद करता है भगवान को जोड़ने के लिए, महीने में 2 एकादशी आती है जो हमको भगवान को जोड़ने के लिए मदद करती है, साल में 4 महीने आते हैं चतुर्मास वाले जो ब्रह्म मुहूर्त भी है, एकादशी भी है, और उसमें और भी लाभ है, तो 4 में भी कार्तिक महीना बहुत लाभकारी है, और 3 साल में एक बार एक महीना आता है जो कार्तिक से भी 16 गुना अधिक पावरफुल है। कार्तिक में कहा गया है कि आपने जो व्रत किया है उसका आमतौर से 100,000 गुना अधिक लाभ मिलता है, 100,000 गुना, और अधिक मास में उसमें 16 गुना लाभ मिलता है। मतलब अगर आप कल एक माला कर लिए होते और आज एक माला करेंगे तो आपके 1,16,00,000 माला हो गई आज, उतना लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आप कह ली एक ही माला मत करना, अपना 16 माला का नियम रखना अच्छी तरह से, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं है। लेकिन वो 16 माला करेंगे तो 16,00,000 माला का लाभ आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इतनी कृपा भगवान करते हैं, इतनी कृपा। और ये जो पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, इसकी जो कथा है उसमें सीखने लायक एक चीज है। संक्षेप में आपको कथा बताऊंगा मैं कि 32 महीने और 11 दिन के बाद में ये अधिक मास तैयार होता है, 30 दिन का गैप जो है वो समतल करने के लिए, समतोल। और इस मास में सूर्य भगवान कोई राशि में प्रवेश नहीं करते, यानी कि मकर संक्रांति में भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति बन जाती है, लेकिन वो हर महीने होती है। कोई कोई राशि में भगवान सूर्य जो है प्रवेश करते हैं, वृश्चिक संक्रांति, मीन संक्रांति, ऐसे हर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस महीने में जब ये पैदा होता है तो सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता है, इसलिए इस महीने में कोई भी व्रत कोई भी मुहूर्त निकलता नहीं है, शादी का, गृह प्रवेश का, वास्तु पूजा का, उपनयन का, या किसी भी प्रकार का जो शुभ मुहूर्त है वो इस महीने में निकलते नहीं है। और जब ये मुहूर्त नहीं निकलते हैं तो कोई भी देवताओं को उसमें आहुति, समिधा, कोई ऑफरिंग अर्पण नहीं होता है। तो मुहूर्त बनता है तो देवताओं को उसमें से हिस्सा मिलता है, देवता एक्सेप्ट करते हैं उसको यज्ञ में से और किसी विधि में से, अग्निहोत्र में से। इसलिए देवताओं ने सब इस मन को त्याग कर दिया कि हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। देखिए देवता होने के लिए भी हमको तड़पना नहीं चाहिए, क्योंकि देवता होने पर भी वही है, क्या लाभ और क्या नुकसान। बट इज ओनली मेंटेलिटी इज देयर, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या मिल रहा है इसमें। देवता बनने पर भी यही स्थिति है, नीचे कौन तपस्या कर रहा है तो मेरा स्थान कोई ले लेगा, उसका टेंशन है। कोई राक्षस आके तपस्या करेगा और इंद्र बन जाएगा तो वो भी टेंशन है। तो देवता बन के कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है, खाली अधिक सुविधा है और अधिक एंटेंगलमेंट है, अधिक फंस जाना है। तो देवता लोगों ने सभी इस महीने को त्याग कर दिया कि हमको इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये महीना देवी के रूप में भगवान के पास गई बहुत दुखी होकर कि मेरा कोई वाली नहीं है, कोई नाथ ही नहीं है, कोई मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अपना बनाने को तैयार नहीं है, अपना नाम देने को तैयार नहीं है, मेरे लिए कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है किस चीज का। ऊपर से उसको मल कहा गया है, ऐसे वो कह रही है भगवान को। मल यानी कि जो उत्सर्जित वस्तु होती है ना, उसको त्याग किया जाता है। सुबह हम लोग त्याग कर देते मल को, मेरे नाम ही दे दिया मल मास, मतलब इतना निंदा किया उसका। चलो कोई काला कलूटा है तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन उसको बार बार काला कलूटा बोला जाए तो कितना दुख होगा उसको। वैसे इस मास को, उस देवी को निंदा करके परेशान कर दिया। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है, जब तक आपके पास कुछ है तब तक आपके पीछे लोग हैं। जब तक आपके पास में जो बहुत सारा था आज समाप्त हो गया, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, केवल जो आपको प्रेम करते हैं वो आपके साथ रहेंगे। तो वैसे अवस्था हो गई। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उस देवी ने की, जो हम सब लोगों को भी करना चाहिए अगर आपकी स्थिति ऐसी होती है तो, और नहीं होती है तो भी। जरूरी नहीं कि हर आपको समय कष्ट ही हो और आप ये वो तरीका अपनाएं, चलो कष्ट आएंगे तब देखेंगे तो ये आप तरीका अपनाएंगे, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना वो संकट का इंतजार नहीं करता है, वो सम रहता है सुख और दुख में। तो क्या किया देवी ने, वो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान का आश्रय लिया, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित किया और अपने व्यथा निवेदन उनके चरणों में किया। जैसे ही इस देवी ने पुरुषोत्तम भगवान का चरणों का आश्रय लिया, उसी समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको अपनाता हूं। देखो क्या से क्या, मलमास निंदित, हाँ क्या कहते हैं उसको, दुर्लक्षित जो चीज है वो एकदम सर्वोच्च व्यक्ति ने उसको स्वीकार कर लिया। ये हमारे जीवन का रहस्य है। हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं अगर हम पतित हो जाए या बहुत गिर जाए, गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए, असहाय हो जाए। वो सबसे अधिक अच्छी अवस्था होती है सहायता लेने के लिए। अगर आपको अपने आप को असहाय नहीं समझते हैं तो आप सहायता लेने को नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान की दया से ऐसा हो जाएंगे तो सहायता लेने को जाएंगे आप, और सहायता मिलेगी आपको, आश्रय मिलेगा, आश्रय मिलेगा। तो उसने ले लिया वो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनाता हूं, नंबर वन। नंबर टू, मैं अपना नाम तुम्हें देता हूं, नंबर टू। नंबर थ्री, मेरे सारे जितने भी गुण हैं वो मैं आपको दे देता हूं, और ये वरदान देता हूं कि आपका अधिपति मैं रहूंगा, कोई देवता की जरूरत नहीं। और वरदान दिया कि इस महीने में आपके समय में जो भी मेरे विषय में मेरे संबंध में व्रत करेगा वो सीधे उसके अंत में मेरे पास पहुंचेगा, इस जीवन के अंत में। उस एक बार व्रत करने से, एक बार भी आप एक साल में, मतलब एक जीवन में अगर एक अधिक मास का व्रत भी अच्छी तरह से हृदय पूर्वक करते हैं तो भगवान ने कहा है कि आप मेरा निवास प्राप्त करोगे। सारे देवताएं उस व्यक्ति के शरीर में या अस्तित्व में निवास करते हैं, चाहते हैं उसका संग, इसलिए उसके शरीर में निवास करते हैं जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, जो पुरुषोत्तम व्रती है। सारे सद्गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं, सारे पवित्र शुभ दिव्य जो जरूरी है हमें, वो सब हमारे अंदर प्रवेश करता है। हर तरह से हम सराहनीय व्यक्ति हो जाते हैं अगर हम पुरुषोत्तम का व्रत पूर्ण करते हैं। और कहा गया है कि इस पुरुषोत्तम महीने में मनुष्य होने के बाद में अगर हम लोग व्रत नहीं करते हैं तो आगे पीछे जो भी व्रत किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई कुछ मेहनत किया तो उसका जमा रहे अपने पास। नोबडी वांट्स टू लूज एनी बेनिफिट्स ऑफ द हार्ड वर्क। तो चाहे देवी देवताओं का व्रत किया हो या कृष्ण का ही व्रत किया हो, और कुछ भी किया हो, कार्तिक में भी ऐसा ही कहा गया, अगर आप कार्तिक और पुरुषोत्तम का व्रत नहीं करेंगे तो पीछे का सारा जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ये एक बात समझना जरूरी है कि जिस जो कार्य पुरुषोत्तम महीने की देवी ने किया है वो हमको हर समय करना चाहिए, चाहे हम अपने आप को असहाय महसूस करें या असहाय नहीं महसूस करें, अच्छी तरह से महसूस करें, फिर भी सत्य तो यही है कि हम असहाय हैं। सत्य क्या है कि हम असहाय हैं इस दुनिया में, भगवान के अलावा हम सब लोग असहाय हैं, भगवान के सहारे के अलावा सब असहाय अवस्था में हैं। उसको वास्तविक में दीन कहा गया। दीन का मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं है, सुंदरता नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है, कुछ करने के लिए शक्ति नहीं है, वो दीन नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को दीन की भावना अपनाता है, दीनता का अनुभव करता है, उसको दीन कहा गया है। वास्तव में मजबूर से दीन बनता नहीं है, वो पैसा गया इसलिए दीन बन गया ऐसा नहीं है, पैसा आएगा तुरंत अहंकारी बन जाएगा, वो नहीं। जब कुंती माता जी बताती है ना त्वाम अकिंचन गोचरम, तो वो अकिंचन की व्याख्या ये नहीं कि वो जो गरीब है निर्धन है, वो हृदय से अपने आप को समझता है कि ये सब होते हुए भी मैं निर्धन हूं, क्योंकि ये सब जो धन मैं समझता हूं मेरा है वो जाने ही वाला है, मुझे छोड़ के कुछ भी रहने वाला नहीं मेरे साथ। इसकी जो अनुभूति होती है वो अगर अम्बरीश महाराज या पांडव या और चक्रवर्ती सम्राट भी होंगे ना तो भी वो दीन है, और उसके नाथ कृष्ण है, दीनानाथ की व्याख्या वो है। तो दीनता को अपने आप को अपनाता है, वो दीनता अपनाने वाले व्यक्ति का नाथ भगवान बन जाते हैं। हमको उस तरह का दीन बनना चाहिए, चाहे कुछ ऐश्वर्य हो नहीं हो, जो भी है सहारा एक होना चाहिए और वो है परम भगवान का। और इस महीने में एक और ध्यान रखना जरूरी है जो आमतौर के लोग ना समझ नहीं पाते, क्योंकि ज्ञान ये उद्धार का पहला कदम है। अगर उद्धार होना है तो ज्ञान के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। तो कल भी मैं कह रहा था, अगर मैंने एक हाथ यहाँ फैला दिया और फैलाते ही मुझे 1 करोड़ की थैली ऐसी मिल गई, पता लगा कि इधर 1 करोड़ की थैली है, मैंने हाथ फैला के मुझे मिल गया वो। लेकिन अगर वो मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं 4 बार भी हाथ फैलाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा वो, होने पर भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान के लिए श्रद्धा होना जरूरी है। तो श्रद्धा और ज्ञान के ऊपर हमको ये पता होना चाहिए कि इस महीने में पुण्य कार्य का कोई भी फल मिलेगा नहीं। और आप किस तब किताब दान देंगे, किसी को भोजन दान देंगे, किसी को और कपड़े दान देंगे, भगवान के भावना के अलावा केवल दान पुण्य के भाव से करेंगे, आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए पुण्य कार्य का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। तो करना क्या, फिर करना वही है, हर काम को भगवान के लिए ही करना है, भगवान के संबंध में करना है, उनके संतुष्टि के लिए ही करना है, बस दान करना है, उनके नाम से करना है, उनकी सेवा में करना है। प्रसाद वितरण करने का बहुत महात्म्य है इस महीने में, लेकिन तब है जब वो प्रसाद आप वितरण करेंगे, तब है, भोजन वितरण करने से नहीं है। भगवान को अर्पण करके जब वितरण करेंगे तो उसका महात्म्य आपका बढ़ते 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 जाएगा, लाभ बढ़ते जाएगा। इसलिए जैसे कि किसी अंधे को रास्ता क्रॉस कर लिया इस महीने में, अधिक मास है बहुत, ब्राह्मण जो नाम से है जोशी दीक्षित, उनको भोजन को बुलाया, बहुत लाभ होगा। ऐसा भी लिखा है कि जमाई को इस महीने में भोजन के लिए बुलाना चाहिए, उसको सोने का या रत्न का अलंकार देना चाहिए, लेकिन अंडरलाइन ये है कि वो जमाई भगवान का भक्त होना चाहिए, नहीं तो आपका सोने की अंगूठी वेस्ट है, कुछ नहीं मिलेगा आपको लाभ उसमें। तो ये सारी चीज बताने का एक ही तात्पर्य है कि व्रत का मतलब इस महीने में वही कार्य करना है जो भगवान के संतुष्टि के लिए ही किया जाए, उनको ध्यान रखे उन्हीं के लिए किया जाए, भगवान के लिए, उनके भक्तों के संतुष्टि के लिए, वैष्णवों के संतुष्टि के लिए। और वो अगर हम करेंगे तो वो उसका लक्ष्य लक्ष्य गुना लाभ आपको तुरंत 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 मिलते जाएगा। इसलिए केवल ड्राई पुण्य करने की प्रयास मत करना इस महीने में, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, और ये महीने का जो पोटेंसी है वो भी आपके लिए वेस्ट है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हर चीज में भगवान को जोड़ के रखना इस महीने में बहुत जरूरी है। और इस व्रत को 30 दिन पालन करना है पूरी तरह से, और उसके अंत में किसी योग्य वैष्णव ब्राह्मण को घर में बुलाकर उसको भोजन कराना है और उसको यथाशक्ति दान दक्षिणा देना है, तो इस व्रत की पूर्ति हो जाएगी। और कोई भगवान की दया से कोई कड़क नियम नहीं इसके अंदर कि भाई ये प्रिस्क्राइब व्रत दिया गया है सबको ये करेंगे तो ही लाभ मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आप अपना व्रत खुद चुन सकते हैं, और उसमें दो प्रकार के व्रत होते हैं, जैसे आप बोलेंगे मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, ये होते हैं निषेध व्रत, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं तला हुआ चीज नहीं खाऊंगा, और मैं गद्दे पे नहीं सोऊंगा, एक प्रकार का व्रत है। और एक है विधि व्रत, यानी मैं करूंगा, मैं एक माला जप करूंगा, मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे उठूंगा, मंगल आरती में जाऊंगा, मैं मेरा सारा जप जो है वो दर्शन आरती 8 बजे के पहले पूर्ण करूंगा, मैं रोज एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा, रोज एक भागवत जी का श्लोक पढ़ूंगा, रोज भगवान की कथा सुनूंगा, इस प्रकार के जो व्रत है विधि व्रत, टू डूज एंड डोंट्स। तो डूज जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो जो विधि व्रत है ना वो सब भगवान के विषय में होने चाहिए, और उस व्रत में कोई ऐसा बहुत कठोरता नहीं होनी चाहिए, व्रत जो ना आतंकवादी नहीं होना चाहिए, ऐसा व्रत किया कि हमको एक ही दिन में हम लोग फेल हो गए उसमें, एकदम उत्साह में हमने ऐसा व्रत ले लिया कि कोई नहीं किसी ने बताया कथा में तो एकदम तुरंत ऐसे व्रत ले लिए, 4 दिन में सब फ्लॉप हो गए। हमको वो व्रत लेना है जो 30 दिन तक हम लगातार कर सके, इसलिए अपने आप को जानना भी जरूरी है, अपनी स्थिति क्या है पता होना जरूरी है, और उसके अनुसार ये व्रत हमको तय करने हैं। कोई बात नहीं, आज शुरू हो गया व्रत, वैसे तो उसके शुरू में पहले ही करके रखना चाहिए नियम सब, कोई बात नहीं, अभी भी आज फर्स्ट डे है, हमारा भाग्य है कि हम पहले दिन प्रभात जागृति कार्यक्रम है, और लास्ट अधिक मास में भी पहले ही दिन बुधवार का प्रभात जागृति कार्यक्रम था, मुझे याद है बिल्कुल, कृपा है भगवान की, ऐसे भगवान मौके आपके लिए अरेंज कर रहे हैं कि आपको सावधान किया जा रहा है, भूलने के पहले आपको सावधान करके याद किया जा रहा है। तो हमको लिखना है कागज में कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हम लोग रोज कर सकते हैं 30 दिन तक, तो ये व्रत सफल हो जाएगा। व्रत में अगर कठिनाई आती है ना तो वो कठिनाई पर ज्यादा ध्यान रहता है और भगवान पर ध्यान नहीं रहता है। समझे, आपने कहा कि मिठाई नहीं खाऊंगा, बार बार मिठाई खाने के मौके आ रहे हैं, तो आप खाली मिठाई नहीं खाना है इस पर ही ध्यान करेंगे, लेकिन व्रत का मतलब क्या है, भगवान पर ध्यान करना है। निषेध वस्तु पर ध्यान नहीं करना है तो आपका व्रत ही फेल हो गया। उधर व्रत करना किसके लिए? व्रत के तीन अंग होते हैं। एक व्रत स्वेच्छा से करते हैं हम लोग, विलफुली, हाँ, विद आवर ओन डिजायर, स्वेच्छा से होता है। और व्रत में थोड़ी सी असुविधा होनी चाहिए, बहुत सारी नहीं होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी असुविधा, इनकन्वीनियंस होना चाहिए, थोड़ा सा पिंच होना चाहिए। और तीसरी चीज है व्रत भगवान के संतुष्टि के लिए करना है, मेरा गौरव हो, मैं क्या व्रत कर रहा सबको पता चले, मेरा उद्धार हो। ये मैं को निकाल के भगवान को उस जगह पर रखना चाहिए और उनके संतुष्टि के लिए ये व्रत करना है। इसलिए आप व्रत तय करेंगे तो सावधानी से, और जो आप कर सकते हैं वो करो, भले वो एक माला आप एक्स्ट्रा कर रहे हो आज से 30 दिन के लिए, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, दिल से करो, हृदय से उसको करना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम व्रत में चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, दोनों को ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया गया है, इंद्रिय भोग से दूर रहकर भगवान में समय लगाना है। और इस व्रत को करते हुए वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे हिजोलिनेस जयपता का स्वामी महाराज, हमारे बड़े पूजनीय आचार्य हैं वो इस्कान के, उनके सर में जब भी बहुत बड़ी बीमारी ब्लीडिंग हुआ था, बहुत भयंकर रीति में वो कोमा में थे, हाँ, इंदौर हॉस्पिटल में। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब वो पहली बार होश में आए तो अधिक मास शुरू होने ही वाला था कुछ दिन के बाद में, जस्ट बिफोर दैट, हाँ, लास्ट अधिक मास आषाढ़ था, जगन्नाथ जी का विग्रह चेंज हो गया, तो आषाढ़ के पहले वो एडमिट थे। जैसे होश में आए सबसे पहले उन्हें क्या बताया होगा, टेल द डिवोटीज टू फॉलो अधिक मास व्रत, नंबर टू, फर्स्ट टेल द डिवोटीज टू फॉलो अधिक मास व्रत, नंबर टू टेल देम टू इंस्पायर अदर्स टू डू सो एंड गिव द होली नेम टू अदर्स, एंड थ्री डू नॉट ऑफेंड वैष्णवस इन दिस मंथ इमीडिएटली ऑन। अभी आप देखिए, समझो हम डेथ बेड पे हैं या हम बहुत भयंकर कोमा से जागृत हो गए हैं तो क्या बोलेंगे हम? तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है विच इज ऑन द टॉप ऑफ अवर माइंड, वो हम लोग पहले बोलेंगे, है ना, इट शोज व्हाट इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड। अगर आप तुरंत होश में आके बोले तिजोरी की चाबी कहाँ है तो मतलब आपके मन में तिजोरी ही चल रही थी पूरी तरह से, इसलिए होश में आते ही तुरंत तिजोरी की चाबी का प्रश्न पूछेंगे आप। उसी तरह से संत के हृदय में करुणा प्रधान होती है हमेशा, वो खुद तो व्रत करेंगे, इतना बोलने वाले व्यक्ति तो खुद तो व्रत करेंगे ना, लेकिन वो बता रहे हैं सबको बता दो, इसका मतलब ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो जानते हैं संत लोग कि कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं, व्रत यानी असुविधा कौन स्वीकार करेगा? आप बोले 8 बजे उठकर 9 बजे मंगल आरती होते तो हम जाएंगे, 3:30 बजे उठकर 4:30 बजे मंगल आरती जाना बहुत मुश्किल काम है, तो व्रत यानी असुविधा होती है तो कोई करेगा नहीं। तो कलयुग का स्वभाव ही आलस्य है, तो वो सब संत लोग जानते हैं कि इन लोगों को डिस्काउंट के बिना काम नहीं होता है कुछ, हर जगह डिस्काउंट चाहिए, आसानी चाहिए, तो फिर करेंगे लोग। और ये बहुत आसान महीना आ रहा है, 3 महीने में एक बार आता है, सबको जगा कर उसमें लाना जरूरी है ताकि वो जो नहीं भी करते हैं उनको भी अधिक लक्ष गुना लाभ मिलकर इस महीने में प्राप्त करेंगे तो एकदम स्पीड से मेरे पास आएंगे, ऐसे भगवान ने अरेंजमेंट किया। और संत लोग भूलते नहीं है, वो याद रखते हैं, पहले से ही याद करना शुरू करते हैं, आ रहा है, तैयारी करो, भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट। अभी आज भी मैसेज जाएंगे, कल भी मैसेज आया, कल शुरू होने वाला है, आज आएगा, आज शुरू हो रहा है, अभी भी करना है, 10 दिन के बाद भी करेंगे, 10 दिन क्या चलेगा, अभी 20 दिन बाकी है, करो क्योंकि हम जानते हैं ना प्रचार क्यों करते हैं, प्रचार इसलिए करते हैं कि अधिक जन जो माया में फंसे हुए हैं, दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं, कष्ट में बिता रहे हैं, नरक जैसा जीवन जी रहे हैं, उन सब लोगों को आनंद मिले, भगवान का सानिध्य मिले, इसलिए लोग प्रचार करते हैं। मेरे अकाउंट में कितने डिवोटी बनाए उसके नहीं बने करते, करुणावश करते हैं। और अगर वो प्रचार करने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि इतने आसानी से लोग आ सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो छोड़ता नहीं उस मौके को। और इसलिए सब लोगों को विनती है, आप जितने लोग बैठे हैं, जितने को पता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, सबको बताइए। आप रोड पर भी मिलेंगे किसी को, ट्रेन में मिलेंगे, उनको बताइए आप एक माला जप कीजिए भगवान के नाम का, एक बार कीजिए, एक नाम लीजिए भगवान का दिन में तो भी चलेगा, लेकिन उनको इंड्यूस कीजिए आप, क्योंकि वो करने से दो लाभ होते हैं, उसको लक्ष लक्ष गुना लाभ मिलेगा और आपको भी, आपने उसको दिया इसलिए भगवान की कृपा आप पर होगी, क्योंकि भगवान ज्यादा करके आप क्या कर रहे हो खुद के लिए वो देखते नहीं है, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो उसका ज्यादा ध्यान भगवान पर रहता है, क्योंकि उसमें करुणा होती है, परोपकार जो है ना भगवान को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे, खुद के लिए करें भी सुनेंगे, लेकिन स्पीड जो है ना वो 4G 5G होता है ना, वो परोपकार में होता है, परोपकार का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। और एक इस महीने का महात्म्य है, वो है श्रीमद् भागवत का पठन कथन, बोलना और सुनना और पढ़ना। श्रीमद् भागवत इस महीने का एक अविभाज्य अंग है, श्रीमद् भागवत का सहारा जो इस महीने में लेता है उसको अनंत अनंत लाभ हो जाते हैं, भगवान की अनंत कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, वो शास्त्र रूप में हमारे लिए आया है। कृष्ण भगवान यहां से पधारते समय अपने आप को भागवत में प्रकट करके चले, कैसे, जब उद्धव जी उनको मिल रहे थे कह रहे थे भगवान आप जा रहे हो कैसे होगा विश्व का, मेरा कैसे होगा, मैं ये नहीं पाऊंगा आपसे, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मुझे ले चलो आप जहां पे आप जा रहे हो। उद्धव जी ने बहुत करुण भावना प्रकट किया भगवान से, तो कहते हैं कि उसी समय भगवान ने अपने आप को भागवत में अर्पण किया और भागवत जी प्रकट हो गए। कृष्णो स्वधाम उपगते, जो भगवान अपने स्वधाम में जा रहे थे उसी समय भगवान ने अपने आप को भागवत में अर्पण किया, भागवत को यहां रखा और भगवान अपने धाम में चले गए, यानी कि भगवान गए भी और भगवान नहीं भी गए। और इसीलिए जब श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां बहुत ही दुखी हो गई थी कि भगवान अंतर्धान हो गए, तो बड़ा विलाप करते हुए ब्रज में आए, तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उद्धव जी के पास पहुंचे, वो वहां उद्धव जी प्रकट हो गए, कुसुमलता गुलमलता के रूप में थे और मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, और उद्धव जी ने भगवान के पत्नियों को 30 दिन के लिए श्रीमद् भागवत सुनाया, 30 दिन के लिए, कोई समय की पाबंदी नहीं थी कि 7 दिन में सुनाना है 4 दिन में सुनाना है, सुनाना है बस, तो 30 दिन तक सुनाया श्रीमद् भागवत। लेकिन विशेष बात उसमें समझने की ऐसी है कि जैसे ही पहला श्लोक कहा, रानियों का सारा विलाप दुख कष्ट खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही पहले श्लोक का उच्चारण हुआ श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य का अनुभव रानियों को हुआ। This is the proof that Srimad Bhagavatam is Sri Krishna himself. अभी तो धर्मो प्रोजित कैवता वही चल रहा है ना, तो कथा शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी हर एक श्लोक श्रीमद् भागवत का स्वयं कृष्ण है, उसका उच्चारण साक्षात भगवान का सानिध्य है, और वो था क्योंकि उनको कृष्ण के सानिध्य का अनुभव था, तो उन्होंने पहले किया है उत्कट रूप से, तो वो सानिध्य उनको मिला इसलिए तुरंत उनका सानिध्य न होने का दुख था वो तुरंत समाप्त हो गया। दिस इज द प्रूफ। और वो पूरा भागवत कथन में आनंद में रहे, पति चले गए हैं, पति के वियोग में दुख रहे लेकिन फिर भी आनंद का अनुभव किया, दशम स्कंद में खुद का भी दर्शन किया, मुख कमल है ना भगवान का, वो तो भगवान के मुख कमल के साथ में अपना भी वर्णन सुना, अपना भी दर्शन किया, और 12वां स्कंद होने के बाद में अपने रूप में विलीन होकर गौलोक धाम चले गए। शक्ति है श्रीमद् भागवत में, साक्षात भगवान को आपको सानिध्य प्राप्त कराने की शक्ति श्रीमद् भागवत में है। जब हम बद्ध अवस्था में इस दुनिया में जी रहे हैं तब भी, और परमहंस अवस्था में मुक्त अवस्था में जिएंगे तब भी, और शरीर छोड़कर जब भगवत धाम में जाएंगे तब भी, हर अवस्था में ये शास्त्र आपको निरंतर भगवान का सानिध्य देते रहेगा। और पुरुषोत्तम व्रत का सार यही है कि सतत भगवान के सानिध्य में रहे, इसलिए श्रीमद् भागवत का विशेष इसमें अनुरोध किया गया है। और सतत भगवान का सानिध्य प्राप्त करते रहने के लिए दो चीजें आवश्यक है इस महीने में, इसमें बिना उद्देश्य का क्रोध नहीं करना चाहिए, स्वार्थवश या इंद्रियों को भोग नहीं मिला या इच्छा के विरुद्ध कुछ काम हुआ इसके लिए स्वार्थवश क्रोध नहीं करना चाहिए, और इस महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी झूठ का भी अलग प्रकार होते हैं ना, अलग बच्चे को बोलते नहीं नहीं उधर मत जाना, लाइक थोड़ा झूठ बोल दे, बच्चा गलत ना काम करे, वो उसके हित में है, उसको झूठ नहीं कहते, वो सत्य के प्रावधान में किया हुआ असत्य है, उसको असत्य नहीं कहते। जैसे कि साधु के घर में कोई लड़की भाग भाग के आई जिसके पीछे डाकू लगे हुए हैं, हाँ साधु ने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आए, तो झूठ हो गया ना वो, तो लड़की उसके पास में है आश्रय में, लेकिन डाकुओं को बोल रहे नहीं यहाँ पर नहीं है, तो वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। वो सत्य के विषय पर बताया हुआ, सत्य को संभालने के लिए, सत्य को बरकरार रखने के लिए बताया हुआ असत्य है, तो वो सत्य में ही आता है। लेकिन स्वार्थ के लिए जो असत्य बोलते हैं तो उसका पाप लगता है। तो वैसा स्वार्थी असत्य झूठ इस महीने में नहीं बोलना चाहिए, असत्य के ऊपर आधारित कार्य नहीं करने चाहिए, डिसऑनेस्ट जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो कार्य नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके उतना क्रोध को वश में रखना चाहिए। तो पूरी तरह से व्रति जो है वो दिव्य बन जाता है, यानी हम और आप भी इस व्रत को पालन करने में। इसलिए वो इंद्रिय भोग को दूर, क्योंकि इंद्रिय भोग होने से ना असत्य का प्रकाश होता है, इतना इंद्रिय भोग के पीछे भागते ना असत्य हमारे अंदर प्रवेश करता है, असत्य के ऊपर कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है वो। ये इंद्रिय भोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का एक दुर्गुण है, वो आते ही तुरंत आपको असत्य के मार्ग पर प्रवृत्त करेगा। यू विल बी फोर्स टू बी ऑन द पाथ ऑफ फॉल्सहुड। तो आप कोशिश कीजिए, और इसके इसको भी हासिल करने के लिए शास्त्र का सहारा बहुत जरूरी है। अगर आप शास्त्र के सहारे में रहेंगे ना तो आपको सत्य का पालन करना बहुत आसान हो जाएगा। इफ यू विल डिस्ट्रेस्ड अप्रोच द शास्त्र तो आपको मदद करेगा वो। तो संक्षेप में अगर आपको देखना है तो जितने भी लोग भक्त बने हुए हैं वो सब एक परमानेंट व्रति है, इज इट नॉट ट्रू? हमने सबने गुरु जी का व्रत लिया है, हरी नाम का व्रत लिया है, चार नियम पालन करने का व्रत लिया है, शास्त्र पढ़ने का व्रत लिया है, तुलसी पूजन का व्रत लिया है, भगवान का दर्शन करने का व्रत लिया है, शास्त्र पढ़ने का लिया है, धाम में जाने का व्रत लिया है, ये सब हम लोग करते रहते हैं कभी ना कभी साल में, ये सब चलते रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी व्रत होता है, ये तो क्या है बाय कंपल्शन हो गया कि आपको अपनी अभी आपने गुरु जी का दीक्षा लिया तो आपको ये करना ही है। लेकिन ऐसे कहा गया है कि आपको हृदय से वो पालन करना चाहिए। व्रत है इसलिए व्रत व्रत करके पालन है, अभी कभी दो माला का व्रत लिया, अभी बाप रे अभी तो दो माला और करनी है, 16 माला तो हो गई मुश्किल से, अभी दो माला और करनी है, ऐसे कर करके करेंगे ना तो फिर वो आनंद नहीं आता है उसके अंदर। व्रत भी स्वेच्छा से करने के वजह से आनंद से निभाना चाहिए। व्रत को कष्ट और पीड़ा के रूप में देखकर, पीड़ा के रूप में उसको पालन नहीं करना चाहिए। ये और मैं सूक्ष्म बात बता रहा हूं, आप व्रत ले लिया है और अभी आपको कष्ट हो रहा है उसको पालन करने में, नहीं, उसको भी आपको आनंद से खुशी से करना चाहिए। जैसे बेटी की शादी करते हैं तो शादी कराने में बहुत कष्ट होता है, अरेंज करने में वगैरह, लेकिन बेटी का पिता जो है ना बड़े खुशी से सब करते रहता है, लेबर ऑफ लव कहते हैं उसको, है ना। तो प्रेगनेंसी की औरत होती है या बच्चा हो गया उसको, रात में दस्त कर रहा है, बुखार आ रहा है, जगा रहा है आपको रात भर, तो वो कष्ट के रूप में माँ उसको देखती नहीं है, वो बड़े प्रेम से उसको देखती रहती है, उसका सारा कष्ट प्रेम से निभाती रहती है, उसको प्रेम का अनुभव नहीं होता है, उसको बोझ का अनुभव नहीं होता है, वजन का अनुभव नहीं होता है उसको। तो व्रत को भी उसी तरह से पालन करना चाहिए, प्रेम से, अपनापन से, दिल से पालन करना चाहिए। भगवान ऐसे देख रहे हैं ये मुझे ये पाना चाहता है लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है उसको, खुश नहीं है वो करने में, वो जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान भी हमारे जैसे ही व्यक्ति है ना, वो भी देखते हैं कि भाव क्या है आपका, इसलिए व्रत को भी बड़े हृदय पूर्वक करना चाहिए। मैं आपको सबको शुभकामना देता हूं कि आप सब लोग इस महीने में हृदय पूर्वक, दिल पूर्वक, हाँ ध्यान पूर्वक, स्वेच्छा से भगवान को प्रसन्न करने के व्रत को पूर्ण करने में समर्थ रहे। और जो व्यक्ति आपके इर्द गिर्द थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं उनको भी आप सहायता करें, उनको भी आप प्रेरणा दें, उनको भी आप उत्साह दें, हर प्रकार के नए नए तरीके बनाएं जो उनको उत्साह मिले और प्रेरणा प्राप्त हो पालन करने में, हार न जाए बीच में, सब लोगों को सहायता कीजिए। अल्टीमेटली भक्ति का जीवन जो है ना वो सहज जीवन है, भक्ति का जीवन एकाग्रता एकांत जीवन नहीं है, भक्ति का जीवन यानी संघ का जीवन है वो। वी ऑल आर ट्रैवलिंग बैक टू गॉड टुगेदर, नॉट अलोन, सबके सहारे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं भगवान की ओर। अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं। एकांत किर हरिर भक्तिर उत्पाद ये भी कल्पते, एकांत में जाकर आप कुछ करेंगे तो फिर उत्पात मचने की संभावना है, क्योंकि एकांत तो एकांत ही होता है ना। विश्वामित्र भी एकांत में ही थे जब घुंघरू बजे, है ना। तो एकांत हर समय सहायता करेगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन संग होगा तो वो सहायता करेगा ही हमेशा। दैट इज अ गारंटी, देयर इज नो इफ एंड बट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। संग में रहिए, नम्रता से संग लीजिए, कमजोर पड़े तो आसरा लीजिए, सहायता मांगिए, लेकिन करिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, है ना। कभी कभी आते हैं, उसकी जानकारी होना जरूरी है, और पूरी जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ में उसको निभाना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। एनीबडी एनी क्वेश्चन। श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव की, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।